नमस्कार। कोरोना महामारी से अभी पूरा देश और दुनिया जूझ ही रही है कि नया साल आते आते एक और समस्या सामने खड़ी हो रही है। अब एक बार फिर से बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा का संकट देश के सामने कई इलाकों में सामने आ रहा है। कम से कम चार राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और हिमाचल प्रदेश में हजारों अलग अलग पक्षियों की मौत के बाद उनके सैंपल्स की जाँच के आधार पर बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हरियाणा में भी पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं, लेकिन अभी वहां बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि देश के में इस वक्त प्रवासी पक्षियों के आने का समय होता है, जो हजारों मील दूर साइबेरिया तक से देश भर में अलग अलग अभयारण्यों, जंगलों और वेटलैंड्स में पहुंचते हैं। तो बर्ड फ्लू के मामले सबसे पहले राजस्थान में सामने आए। यहाँ के झालावाड़ जिले में सैकड़ों की तादाद में कौवों की मौत हुई। उनके सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए तो बर्ड फ्लू की आशंका सही साबित हुई। इसके बाद कोटा, पाली, जयपुर, बारा और जोधपुर में भी कौवों के मरने की खबरें सामने आने लगी। राज्य में कुल 16 जिलों से अभी तक 600 से ज्यादा पक्षियों के मरने की खबरें आई हैं। उधर मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक 376 कौवों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 142 की मौत इंदौर में हुई है। इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल्स में बड़ी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कौवों और कुछ अन्य पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन पोल्ट्री उद्योग में हुई रैंडम जांच के बाद अभी तक चिकन में ये बीमारी नहीं पाई गई है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि केरल और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों से आने वाले 10 दिन तक चिकन मंगाने पर रोक लगा दी गई है। उधर इंदौर में कंट्रोल रूम बनाया गया है और रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है। इंदौर के जिन इलाकों में कौवे मरे पाए गए हैं, वहां घर घर जाकर मेडिकल जांच के लिए टीमें बना दी गई हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 2400 से ज्यादा वाइल्ड गीज नाम के प्रवासी पक्षियों के मृत मिलने के बाद हड़कंप मचा। यहाँ के पोंग बांध की झील में प्रवासी पक्षी मृत पाए गए। कांगड़ा जिले में चिकन, मछली और अंडों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। केरल में पिछले कुछ दिनों में 12,000 बतखों की बर्ड फ्लू के कारण मौत हुई। अलपुजा और कोट्टयम में बर्ड फ्लू के H5N8 स्ट्रेन के सामने आने से यहां करीब 36,000 बतखों को एहतियातन मारना पड़ रहा है। इन जिलों में कंट्रोल रूम और क्विक रिस्पांस टीम बना दी गई है। केरल में इसे राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है। तो राज्य के वन मंत्री के राजू कह चुके हैं कि जिन किसानों की बतखों या मुर्गियों को मारा जाएगा, उनके लिए मुख्यमंत्री से विचार विमर्श के बाद मुआवजे का फैसला भी किया जाएगा। उधर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर मुर्गियों के मरने की खबर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली के अनुसार पिछले 10 दिनों में 4 लाख पक्षियों की मौत हुई है। हालांकि इनके सैंपल्स टेस्ट के लिए जालंधर की रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में भेजे गए, लेकिन अभी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। जो पहले रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार नहीं था बर्ड फ्लू। इस बीच पोल्ट्री उद्योग से जुड़े कारोबारियों में चिंता बढ़ गई है। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुखदेव राठी और महबूब आलम को।
लेकिन अभी क्या है, कोई पार्टी का फोन आ ही नहीं रहा है। वो लोग डर रहे कि मान लिया अगर बर्ड फ्लू हो गया तो हमका अंडा रास्ता में।
कब से फोन नहीं आ रहा, जब से खबर फैला है तब?
बस ये 4-5 दिन से ज्यादा खतर। इसके पहले भी बर्ड फ्लू का हल्ला आपका 15 दिन से आ रही है मीडिया में, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं था। जब से ये पेपर टीवी में इतने जोर शोर से व्हाट्सएप ग्रुप में लोग डाल रहे हैं। अच्छा ऐसा भी है कि लोग 2 साल पहले का भी न्यूज डाल दे रहे हैं। बिजनेस में हम लोगों का बहुत ही असर पड़ा। हम लोगों का भविष्य तो खतरा में आ चुका है। आगे पैसा आएगा कि ना आएगा, हम लोग को जो पास में माल है वो कस्टमर लेंगे नहीं ले, कच्चा चीज है, हम लोग ज्यादा दिन रोक भी नहीं सकते हैं। 2-3-4 दिन वेट कर सकते, उससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते। मान लीजिए एक अंडा का लाइफ अगर 25 दिन है सर्दी में, मेरे पास अगर 5 दिन रुक जाए, आगे रास्ता में गाड़ी 4-5 दिन लग जाएगी, फिर वहां से कस्टमर के यहाँ माल बिकेगा वो खुदरा वाले ले जाएंगे, वहाँ 4-5 दिन लगेगा, वो तो अंडा ऐसे ही खराब हो जाएगा।
ये एक्चुअली रानीखेत की प्रॉब्लम है, जो कि पोल्ट्री की बड़ी कॉमन डिजीज है और हर साल विंटर में ये आती है एक बार जरूर। तो इस बार क्या हुआ, जो वैक्सीनेशन इसके लिए हम करते थे वो इतनी इफेक्टिव नहीं हुई, उसका वायरस म्यूटेट हो गया था। तो वो जो वैक्सीन जो हमारे को चेंज करके मिली, वो अभी लास्ट 20-25 डेज हमें को पहले हमारे को मिली है, वो अराउंड 10th को हमें मिली वो। उसके बाद वो वैक्सीन हमने अप्लाई कर दिया, अब फार्मों पे बहुत रिलीफ है। उससे पहले थोड़ा बहुत जो डैमेज हो गया या नुकसान हो गया वो हो चुका है, अभी कुछ नहीं ऐसा है, किसी फार्म पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उधर गुजरात के जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराता दिख रहा है। यहाँ मानवदर तहसील के बाटवा के पास एक 53 पक्षी मृत मिले तो उससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। वन विभाग को बर्ड फ्लू की आशंका है लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मामलों के मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि भारत में बर्ड फ्लू मुख्य तौर पर प्रवासी पक्षियों से फैलता है जो सर्दियों के महीनों यानी सितंबर अक्टूबर से फरवरी मार्च के दौरान भारत आते हैं। इसके अलावा संक्रमित चीजों के इस्तेमाल से इंसानी गतिविधियों से ये आगे फैलता है। भारत में अभी इस संक्रमण के स्थानों में आने की कोई रिपोर्ट नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश को सबसे पहले 1 जनवरी 2021 को इस मामले में एडवाइजरी जारी की गई ताकि संक्रमण आगे ना फैल सके। हिमाचल प्रदेश को भी एडवाइजरी भेजी गई है ताकि वो ऐसे कदम उठा सके जिससे संक्रमण पोल्ट्री उद्योग में फैलने से रोका जा सके। केरल ने भी 5 जनवरी से संक्रमण पर काबू पाने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जिसके तहत संक्रमण की आशंका वाली मुर्गियों और बतखों को मारा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल और हरियाणा में बर्ड फ्लू से ग्रस्त इलाकों में अपनी टीमें भेज दी हैं। बीमारी पर निगाह रखने के लिए दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो दैनिक आधार पर राज्यों को निर्देश दे रहा है। नेशनल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एहतियात बरतने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मामलों के मंत्री गिरिराज सिंह ने आज ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, कुछ जगहों पर बर्ड फ्लू से ज्यादातर प्रवासी और जंगली पक्षियों के मरने की रिपोर्ट आई है। मीट और अंडे को पूरी तरह पका कर खाएं। घबराने की कोई बात नहीं है। राज्यों को सतर्क कर हर संभव मदद दी जा रही है। कोरोना वायरस से डरी जनता बर्ड फ्लू को लेकर अब घबरा गई है, लेकिन सवाल यह है कि इसे लेकर हमें कितना घबराने की जरूरत है। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ तबीयत खास मेहमान है डॉक्टर के एम एल पाठक, जो कि एक वन जीव विशेषज्ञ हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में एनिमल साइंस डिपार्टमेंट के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहे हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा हैं जो एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, और साथ ही डॉक्टर बीसी चौधरी हैं जो जाने माने पक्षी विज्ञानी हैं। आपको बता दें इनका माइग्रेटरी बर्ड्स पर बड़ा काम है और आप अभी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी भी हैं। तो मिश्रा जी, अगर मैं पहले आप ही से चौधरी जी अगर मैं आपसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी, सर आपसे समझना चाहूँगी, कहा ये जा रहा है ये माइग्रेटरी बर्ड से आता है, इस समय जो भी जानकारियां आई हैं हमारे देश के सामने, आप स्थिति को, बर्ड फ्लू को किस तरह से आंक रहे हैं?
ये मैं कहूंगा कि हमारे देश में कभी 310 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, क्योंकि भारत जो है ना सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में है जिसमें 35 नेशंस है, और हमारे जो फ्लाईवे है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ईस्ट एशियन फ्लाईवे और ऑस्ट्रेलो एशियन फ्लाईवे है, ये तीनों फ्लाईवेज में हमारे पास बर्ड्स आते हैं, जिसमें से 41 स्पीसीज जो है वो वेटलैंड बर्ड्स है जो पानी में रहते हैं, जल जल दलिया जल वेटलैंड एरिया में रहते हैं। अभी अभी तक जो हमें जो फ्लू बर्ड फ्लू का इन्फॉर्मेशन मिला है इसमें से केवल पोंग डैम छोड़ के और कहीं जगह जो हम लोग छोड़ रहे हैं वहाँ केवल बर्ड्स जो चाहे रेसिडेंट बर्ड्स उनसे मिले हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड से कोई ऐसे खतरे की घंटी नहीं बजा है। अभी उड़ीसा में मैं हूँ, जैसे चिल्का लेक में बर्ड ग्राउंड के लिए गया था तो वहाँ कोई खबर नहीं है बर्ड फ्लू का, ऐसे आंध्र प्रदेश में भी कोई खबर नहीं है बर्ड फ्लू का। तो कुछ एरिया में जो है कितना माइग्रेटरी बर्ड्स है और कितना रेसिडेंट बर्ड्स है, जैसे क्रो है वो रेसिडेंट बर्ड्स है, क्रो में अगर जैसे केरला में कहा जाए बहुत सारे क्रो का मौत हुआ है, तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं लगता है कि प्रवासी बर्ड्स के ज्यादा तक हो रहा है। जैसे हमारे बर्ड्स साइबेरिया, चाइना, मंगोलिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, ऐसे सब जगह से आते हैं, उस नेशंस में भी कोई बर्ड फ्लू का खबर नहीं है। तो हम कहाँ तक बर्ड फ्लू का प्रॉब्लम माइग्रेटरी बर्ड से हुआ है या रेसिडेंट बर्ड से हुआ है उसको जानकारी देना अभी मेरे ख्याल में पूरा इमेच्योर कहा जा सकता है।
जी सर।
और हमारे देश में
जी डॉक्टर पाठक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से डॉक्टर चौधरी कह रहे थे कि ये अभी माइग्रेटरी बर्ड से हुआ है या हमारी अब यहाँ से हुआ है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस समय सिचुएशन को जो हमारे देश में है बर्ड फ्लू के मद्देनजर?
देखो निर्जीव, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इसमें इस बीमारी से ज्यादा पेंडेमिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये बर्ड फ्लू जो है एक इन्फ्लुएंजा वायरस ए टाइप से होता है, और जैसा चौधरी जी कह रहे थे कि हर साल जो प्रवासी पक्षी हैं वो हमारे देश में सितंबर और अक्टूबर और ये नवंबर और दिसंबर में आते हैं, और इनका जो रिजर्वायर होस्ट है वो जो वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स हैं जिसमें डक्स और गीज होती हैं, ये नेचुरली उनके अंदर वायरस पाया जाता है। और जब ये बर्ड्स वहां से माइग्रेट करके आती हैं, क्योंकि इनका जो वायरस है वो बर्ड्स के एस्टीटा के साथ जो है गिरता है, तो इससे ये हमारी जो डोमेस्टिक बर्ड्स हैं जो चिकन है और टर्की है वो भी प्रभावित हो जाते हैं। और हर वर्ष 2006 में सबसे पहले हमारे देश में बर्ड फ्लू आया था, और अब दोबारा अब हर साल आता है जाड़ों में, लेकिन इसको भारत सरकार ने अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। हमारे देश में इस डायग्नोसिस की बहुत अच्छी लेबोरेटरीज हैं, हमारे देश के जितने भी वेटनेरियन हैं वो इसको इतने कोऑर्डिनेट करके इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं। तो और क्योंकि ये वायरस किसी भी तरह से हमारे देश में अभी तक एक बार भी इस ह्यूमन में नहीं गया है, तो इसलिए इसमें इतना पेंडेमिक की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें सावधानी बरतनी है। अगर हम सावधानी रखेंगे, अगर हम पोल्ट्री हमें मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि हम पोल्ट्री प्रोडक्ट खाना बंद करते हैं, खाएं जरूर, लेकिन सावधानी के साथ अगर खाएंगे, यानी चिकन है तो पूरा प्रॉपर कुक होना चाहिए, एग खा रहे हो तो आप पूरी तरह से बॉयल फुल बॉयल होना चाहिए, तो इतने हाई टेम्परेचर वायरस मर जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको एहतियात रखना।
बिल्कुल पाठक जी, जो मैं ये समझना ये भी अब चाह रही हूँ कि आपने ये सही कहा, हमने देखा कि जो मंत्री भी हैं इस मामले के उन्होंने वो भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप अंडा मछली फिश चिकन खाते हैं तो उसको अच्छी तरह गर्म करें और खाएं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिंता ये भी होती है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री हमारी वैसे भी कोरोना के दौर में मुश्किल से आगे बढ़ रही थी, काम करना शुरू हुआ था, अब इस वायरस की बात आ गई है। तो चौधरी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी जैसे चार राज्य हैं जो इससे संक्रमित पाए जा रहे हैं, केरल कह रहा है कि भाई ये हमारी राजकीय आपदा है, मध्य प्रदेश राजस्थान ने चिकन जो आना है एग्स आने केरल से उस पर रोक लगा दी है, हिमाचल प्रदेश में भी कांगड़ा है कहा जा रहा है कि और खरीद उस बिक्री पर रोक लगा दी है, तो ये क्या कारगर है? क्योंकि एक हमने जो अंडे के कारोबारी को सुना था वो कह रहे थे जो वैक्सीनेशन होता है नहीं हो पाया था क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना था, उस लिहाज से जो पक्षियों का भी एक वैक्सीनेशन होता है वो नहीं हो पा रहा था जो उनको चारे में दिया जाता है। आप किस तरह से आंक रहे हैं, क्या इसको कंटेन करना आसान होता है? चौधरी जी,
मुझे जहां तक लगता है कि अभी जो रिएक्शन है स्टेट्स का ये प्रिकॉशनरी रिएक्शन है, मुझे नहीं लगता है कि ये इतना चिंता के कारण है। आई थिंक केरला प्रिकॉशनरी मेजर से नेशनल स्टेट आपदा कह दिए हैं, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो भी कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने इसमें चिंता के कारण है अभी फिलहाल।
बिल्कुल, आप कह रहे हैं चिंता के कारण नहीं है। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, सबसे पहले जब इस तरह की खबरें आती हैं तो मन में घबराहट होती है, भले ही सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि इतने घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि इंसानों में अभी नहीं आया है, आपका नजरिया क्या है, क्या कर सकते हैं लोग?
देखिए, जो इस प्रकार की बीमारी होती है, जहां तक आपको इंसान और जानवर के संबंध के बारे में है, जो जानवरों से इंसान में बीमारियां आती है उनको हम जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं, और एवियन इन्फ्लुएंजा से डरने की थोड़ी सी जरूरत इसलिए लगती है क्योंकि इसमें ये पोटेंशियल है कि ये जो है जानवरों से इंसानों में आ सकता है, और पहले आया भी है और उसमें मॉर्टिलिटी काफी हाई है जहां पर भी आया है। तो अगर ऐसी कोई भी संभावना आ रही है कि जहां पर ये वाइड स्प्रेड हो गया है जानवरों में या जो बर्ड्स है उनमें अगर ज्यादा हो गया है, तो ये वक्त है सारे प्रिकॉशंस लेने का। और प्रिकॉशंस में क्या चीज करते हैं, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें ये समझना होगा कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं जहां पर ये इन इन्फेक्टेड बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है। तो यूजली क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस होते हैं या जो उनका इंटेस्टाइनल है, उन सारी चीजों से सिक्रीशन से ये ह्यूमन्स में आ सकता है। तो सबसे ज्यादा एक्सपोज कौन होते हैं इसमें, एक्सपोज होते हैं जो पोल्ट्री वर्कर हैं, जो मीट हैंडलर्स हैं, जो इन सारी इंडस्ट्री में, मीट इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, रॉ मीट के साथ जिनका रोज का काम होता है, तो वो लोग जो है सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं और वहां से एक संभावना बनती है कि ये मानव में बीमारी आ सकती है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर ऐसी कोई भी संभावना आ रही है और तो उसमें जो भी सुझाव वेटरनरी डॉक्टर्स देते हैं उनके हिसाब से जो भी पोल्ट्री फॉर्म्स का करना है या रॉ मीट का करना है वो अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर मैं एक चीज और आवश्यक समझता हूँ आपके दर्शकों को बताना कि इंडिविजुअल लेवल पे जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्यों उसमें कई लोग डर जाते हैं कि हम मीट नहीं खा सकते। मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए जो भी आप प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर आपने एक समान तरीके से उसको पकाया है या हीट किया गया है तो उससे आपको फ्लू होने की, बर्ड फ्लू होने की संभावना ट्रांसमिशन की नहीं रहती है। या आप एग्स खा रहे हैं, जो अंडा है, अंडे को अगर आपने अच्छे से पका लिया है उसमें फ्लू ग्रुप में नहीं होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से उसको फ्राई किया हुआ है, पकाया हुआ, तो उससे भी संभावना नहीं रहती है। लेकिन हाँ, जहां पे भी कच्चा मीट यूज होता है या ऐसी कोई सरफेस है जहां पे कच्चा मीट रखा हुआ है या जो चाकू है जिससे कच्चा मीट काटा जा रहा है, तो उन सब चीज को अगर आप पक्के मीट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो जरूर संभावना रहेगी। तो जनता के लिए यही है कि अगर आप मीट के जो पदार्थ हैं या अंडे का सेवन कर रहे हैं तो उसे भरी भांति पका ले, कम से कम 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर एक समान तरीके से जो पका हुआ मीट है उसका ही सेवन करें, कच्चे मीट का या रॉ इसका फिश का या अंडे का उपयोग ना करें, यह आपको बचाने में सहायक सिद्ध होगा।
बिल्कुल डॉक्टर पाठक, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, समय पड़ रही थी कि अभी हमने जैसे पानी में पक्षी जो आते हैं वो, मछलियों की बात हो रही है, पोल्ट्री की बात हो रही है, लेकिन मैमल्स की बात भी हो रही है, कहा जा रहा है घोड़े, गाय, कुत्तों, बिल्लियों तक में ये आता है, उस लिहाज से क्या आंकलन है, क्या जो ये इन अगर बर्ड्स में आया आया तो क्या स्वाभाविक तौर पर और जानवरों में आता है?
देखो निधि जी, ये करीब 10 दिन से मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारी नई नई कहानियां, नई नई चीजें चल रही हैं। मैं नहीं समझता हूं कि डॉग में, बफेलो में, कैमल में ये वायरस जाता है या गया है, ऐसा कोई केस नहीं मिला है। और हमारे देश में प्रॉपर सर्वे होता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी बर्ड फ्लू आया है तभी हम सर्वे कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक लोग लगातार सर्वे करते रहते हैं और खासकर जब माइग्रेटरी बर्ड का टाइम होता है उस टाइम तो और ज्यादा हम लोग क्वेश्चन रखते हैं। तो ये बाकी मैमल्स में ये वायरस नहीं जाता है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये नेचुरली जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं उसमें रहता है, एक बाद में ये जंप कर जाता है डोमेस्टिक, जो हमारे चिकन और टर्की हैं। लेकिन बाकी मैमल्स में कोई अभी तक ऐसा केस मैंने तो कहीं नहीं देखा है और होता नहीं।
बिल्कुल, तो आप ये बहुत अच्छी बात आपने कही, इससे लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये मैमल्स में भी चला जाए। डॉक्टर चौधरी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है, हालांकि सिर्फ 4 राज्यों की बात हम कर रहे हैं, जो एहतियाती कदम है क्या आपको वो पर्याप्त लग रहे हैं?
अभी देखिए 4 देश की बात कर रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो है ना, ऑलरेडी पूरे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स को खबर चिट्ठी दे चुके हैं कि व्हाट एक्शन दे नीड टू टेक केयर। अपना जो अभयारण्य है, जो नेशनल पार्क है, सेंचुरी से, बर्ड सेंचुरी से, रामसर साइट से, जहां बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, उस एरिया में क्या क्या प्रावधान करना है उसके लिए ऑलरेडी सर्कुलर एडवाइजरी गया है और हर स्टेट में पूरे नेशनल पार्क सेंचुरी, बर्ड सेंचुरीज पे उसके लिए वाइल्ड बर्ड्स जैसे डोमेस्टिक बर्ड्स के साथ मिलना ना हो सकता है, उसका कार्यवाह किया जा रहा है। तो आई थिंक इसी में हम लोगों को चिंता के इतना कारण नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे कहा गया कि हमारे साइंटिस्ट, वाइल्ड लाइफ मैनेजर सब उसमें अवेयर हैं एंड ये सबका प्रिवेंट, आगे नहीं बढ़ने से रोकने के लिए जागरूक है।
डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि वैसे तो ये बिल्कुल इस समय हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है जिस तरह से 2 डॉक्टर्स कह रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि हमें सतर्क रहना चाहिए इस समय, तो जब मनुष्यों में अगर ये आता है, तो आया नहीं है बिल्कुल, क्योंकि पहले भी हमने देखा है जब कभी आया, 2006 में ये बात सामने आई थी, 97 में सबसे पहले हांगकांग में, 1997 में मामला सामने आया था बर्ड फ्लू का, तो जो मोर्टैलिटी है वो नहीं होती, लेकिन अगर हल्का इन्फेक्शन भी है तो वो किस तरह का होता है, किस तरह से अलर्ट रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं लोग?
देखिए, जो बर्ड फ्लू में सबसे बड़ी चीज है, पहले एनिमल्स से और ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ है, और अगर होता है तो करीब 60% तक इसमें मॉर्टिलिटी है। लेकिन और ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आगे चल के अगर जब तक एनिमल्स से ह्यूमन्स में हो रही है तब तक ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन्स टू ह्यूमन होता तो ये किसी भी समय पैंडेमिक तक का रूप ऐसी बीमारियां ले सकती हैं। जहां तक आपने सिम्टम्स की बात कही है, तो इसके सिम्टम्स फ्लू जैसे ही होते हैं। अगर ह्यूमन्स में होते हैं, बुखार का आना है, गला खराब होना है, छींक है, जुकाम है, उसके अलावा मसल में जो पेन है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, तो वो सारे सिम्टम्स, सर दर्द हो सकता है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हो सकते हैं। लेकिन सामान्य जो सिम्टम अधिकतर लोगों में अगर जो आते हैं वो बुखार का है, और जितनी फ्लू लाइक इलनेस है वो सारे सिम्टम्स इसमें आते हैं। सावधानी यही लेनी है। देखिए, सबसे अच्छी बात होती है कि अगर हम प्रिवेंट कर सके, तो अगर हमें ये मालूम है कि इस समय ज्यादा पक्षियों में हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ पक्षियों में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो गूज वगैरह है, उसमें ये आमतौर पर चलता रहता है सब क्लिनिकल स्टेज में, या एक कोई जरूरी नहीं इससे सारे पक्षी मरे। लेकिन कई बार जब ये व्यापक स्तर पर फैलता है, और खास करके पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में जहां पर हम विशेष प्रकार से यू नो फूड के लिए इनको ग्रो कर रहे होते हैं पक्षियों, तो वहां पर मॉर्टिलिटी ज्यादा होती है। तो जो लोग ऐसे पोल्ट्री फार्म से काम करते हैं, या जो लोग मीट इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग रॉ मीट हैंडल करते हैं, वहां पर उनको सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आई थिंक जितने प्रोटेक्टिव उनको इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ग्लव्स है, या मास्क लगाना है, या आंखों के ऊपर चश्मा लगाना है, तो उन सारे सुरक्षा उपकरणों के साथ मीट हैंडलर्स को काम करना चाहिए। और मीट हैंडलर्स के साथ जो भी सुरक्षा के मानदंड मीट इंडस्ट्री के हैं, जो भी विभिन्न एजेंसियों द्वारा बनाए गए हैं सुरक्षा के नियम, उन नियमों के साथ साथ ही आगे बढ़ना चाहिए।
बिल्कुल, और उनको खास तौर पे की जरूरत है। जी जी सर। जी,
जहां भी फूड इंडस्ट्री है वहां पे ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि अगर कहीं ऐसी आशंका आ रही है, तो वहां पर कुछ दिनों के लिए हम रॉ मीट का उपयोग, या ऐसे अंडे जो तरल उसमें खाए जाते हैं उनका उपयोग हम बंद करें, और मीट और अंडे का उपयोग तभी करें जब उसको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान पे एक समान रूप से पकाया गया है। तो इसके फैलने की संभावना बहुत ही कम रहेगी इंसानों में आने की, और हमें सिर्फ सावधानी बरतनी है, हमें पैनिक नहीं होना है।
बिल्कुल, पैनिक की कोई बात नहीं। जी जी, डॉक्टर पाठक, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इससे जो हमारे यहाँ जो पोल्ट्री का जो व्यवसाय है, इससे करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है।
जी।
और पोल्ट्री इंडस्ट्री बड़ा बहुत वेल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है हमारे यहाँ। छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं, तो ये समाज में एक ये मैसेज जाना चाहिए। आज देखिए, हमारे दोनों माननीय मंत्री ने भी कहा है, और मैं स्वयं इस विषय का विशेषज्ञ हूँ, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये बीमारी, अगर अंडा हम खाते हैं और अगर हम चिकन खाते हैं प्रॉपरली, अगर हमने कुक कर रखा है जैसे डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं, तो ये बीमारी आदमियों में नहीं होती है। पहला केस जो अभी आप कह रही थी, वही मैं भी कह रहा हूं कि पहला केस 1997 में हांगकांग में हुआ था, हिंदुस्तान में एक भी केस नहीं हुआ है। तो अगर हम थोड़े से बायोसिक्योरिटी मेजर्स ले लें, हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन रखें, तो हम अपनी इस इंडस्ट्री को बचा सकते हैं।
बिल्कुल,
इंडस्ट्री में अभी आपने कुछ फिल्म दिखाई थी कि जिसमें बहुत बेचारे किसान परेशान है इस बात से, क्योंकि गलत गलत सोशल मीडिया में जा रहा है कि मैं अंडा खा लूंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं चिकन खा लूंगा तो मुझे एवियन इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आप
नहीं, नहीं, हमने तो जो दिखाया है अंडा व्यापारी, वो ये कह रहा है कि हमने जो एक देना था वो नहीं दे पाए कोरोना के वजह से, तो वो दे देंगे, तो ये समस्या लिमिटेड है, सीमित है, ये आगे नहीं बढ़ रही है, उनका ये कहना था जो हमने एक अंडा कारोबारी का दिखाया था। मैं आपसे डॉक्टर पाठक ये पूछना चाहती हूँ, हमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कहीं पे किसी को कोई पक्षी ऐसा ही मरा हुआ मिल जाता है, तो ऐसे में उसको खुद डिस्पोज ऑफ करें या वाइल्ड लाइफ को बताएं, क्या करना चाहिए ऐसे में?
देखिए, उसको पहली बात तो है कि खुद उसको हैंडल नहीं करें। आप अपने नजदीक के जो वेटनरी हॉस्पिटल है, जहां वेटनरी डॉक्टर हैं, तो उनको सूचना दीजिए। वाइल्ड एनिमल को अगर ऐसे मरा कहीं आपको सुबह मिलता है, मान लीजिए आपको कौवा मरा मिला, आपको कबूतर मिला, या आपको मोर मरा मिला, तो आप खुद उसको हैंडल मत करिए। आप उसकी सूचना दीजिए, जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं उनको दीजिए, मेडिकल ऑफिसर को दीजिए, और उसका प्रॉपर डिस्पोजल वो लोग करेंगे और उसकी सैंपलिंग होनी चाहिए और उसकी सैंपलिंग हमारे वैज्ञानिक तो करते हैं। पहले जब 2006 की हम बात करते हैं, 2006 में हमारे पास इतनी अच्छी लेबोरेटरी नहीं थी, आज की तारीख में हमारे पास हिंदुस्तान के पास बहुत अच्छी लेबोरेटरीज हैं जहां इनका सैंपल आप भेज सकते हैं, लोग भेज सकते हैं और सरकार
पाठक जी एक आम नागरिक तो नहीं भेज पाएगा, लेकिन जो आपने कहा कि आप खुद हैंडल ना करें और कोई ऐसा नंबर है या जरूरत ऐसा है कि कहाँ पे सीधे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि एक आम इंसान है उसके पास ज्यादा इतनी वो नहीं होती कि सबको नंबर ढूंढ के करे, तो आपका ये क्या कहना, सुझाव क्या है कि किसको करें सबसे पहले फोन?
देखिए अगर आपके देखिए निश्चित रूप से आप या तो वहां जो मेडिकल डॉक्टर है उसको ही बता सकते हैं,
वेटरनरी
आप वेटरनरी डॉक्टर को बताइए, वेटरनरी हॉस्पिटल जाइए, ज्यादातर लोग जानते हैं वेटरनरी हॉस्पिटल्स गांव में ही होते हैं, तो उनसे संपर्क करिए और उसमें घबराने की जरूरत नहीं, उसको बताइए
और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वालों को भी बता सकते हैं,
और इसके अलावा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वाले हैं उनको बताइए, लेकिन खुद हैंडल नहीं करना है, ये नहीं है कि हम खुद उसका पोस्टमार्टम करने बैठ गए या उसको खोल दिया या देख दिया, इसके अलावा उसको खुद लेके भी न चल दें। अभी कभी क्या होता है कि लाइए कौवा मरा पड़ा है तो मैं इसे उठा के लेके मैं अस्पताल जा रहा हूँ, ये नहीं करना है, आप उसको वहीं पड़ा रहने दीजिए और डॉक्टर को बताइए, संपर्क करिए वाइल्ड लाइफ वालों से संपर्क करिए, वेटरनरी वालों से संपर्क करिए या फिर आप जो है मेडिकल डॉक्टर से संपर्क।
ठीक है, मेरे पास अब समय कम है, डॉक्टर चौधरी आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो बर्ड फ्लू की जानकारी सुन रहे हैं, किस तरह से आप एहतियात बरतती हैं?
मेरा ये कहना होगा कि ये अभी माइग्रेटरी बर्ड का सीजन है, लेकिन अभी जो हमारे पाए गए हैं वो ज्यादातर रेसिडेंट बर्ड्स पे पाए गए हैं, जो मोर्टेलिटी हुए रेसिडेंट बर्ड्स पे हुए हैं, हमारे 41 स्पीसीज जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उसी में से इतने केसेस मिला नहीं अभी, तो हमें प्रवासी बर्ड्स के लिए बर्ड से इतना चिंता की कारण नहीं है, और हमारे जहां बर्ड सेंचुरी से जहां वेटलैंड से जिसके पास जो चिकन फार्म्स है उनको थोड़ा सावधानी बरतना है, जहां जहां हमारे बर्ड सेंचुरी से जहां जहां हमारे वेटलैंड से जहां माइग्रेटरी वाटरफॉल्स आते हैं या रेसिडेंट वाटर बर्ड्स रहते हैं उस जगह पे पास में जो चिकन इंडस्ट्री है फार्म से उनको थोड़ा सावधानी लेना है।
ठीक है,
यही कहूंगा और मैं कुछ कहना नहीं है।
बिल्कुल, डॉक्टर पुनीत मिश्रा आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूंगा कि सावधान रहें, जागरूक रहें और कच्चे जो मीट के पदार्थ हैं उनसे दूर रहें, अगर आप मीट और अंडे का सेवन कर रहे हैं तो पूर्ण तरह पका के करें ताकि आपको अगर कोई ऐसा पक्षी या ऐसा कोई पदार्थ आपके आ भी जाता है तो अगर आपको इसे पूर्णतः पका लिया है अच्छी तरीके से पका लिया है तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे, और फूड हैंडलर्स को जो मीट हैंडलर्स हैं जो रॉ मीट हैंडल करते हैं वो इस समय सारे के सारे SOPs को यूज करके चाहे वो ग्लव्स हो मास्क हो या गॉगल्स हो उनको लगा के ही उस इंडस्ट्री में अपना जो रोज का कार्य है उसको संपादित करें।
बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पाठक ने तो हमें विस्तार से बताया है कि किस तरह से सतर्कता बरतनी है, अगर एक पक्षी आपको मरा हुआ मिल जाए तो उसको खुद छूने की जरूरत नहीं है, आप किसी वेटरनरी हॉस्पिटल डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट को भी फोन कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि इस तरह से आपने पक्षी देखा है। हालांकि अभी तक ये 4 राज्यों में ही सीमित है, बर्ड फ्लू की जो समस्या है केरल में सबसे ज्यादा है, तो हमें सिर्फ एहतियात बरतनी है, घबराना नहीं है, और अगर आप मीट और अंडों का सेवन कर रहे हैं तो अच्छी तरह 70 डिग्री से ऊपर पकाकर उसको खाना है। तो बहरहाल चर्चा में भी इतना ही, और ब्रेक के बाद हम आपको उत्तर प्रदेश से बदायूं से जो आज एक खबर आई उसको विस्तार से दिखाएंगे। बदायूं में अपने बीमार पति के लिए दुआएं मांगने मंदिर गई एक महिला गैंगरेप के बाद मार डाली गई। इस मामले में पुजारी समेत 3 लोगों पर FIR हुई है, इनमें 2 गिरफ्तार हो गए हैं। FIR दर्ज करने में लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी सस्पेंड किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई है।
वो अपने बीमार पति की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ मांगने मंदिर गई थी, गैंगरेप के बाद मार डाली गई। शाम 5 बजे निकली, 7 बजे तक नहीं आई तो बेटे ने फ़ोन किया, फ़ोन बंद मिला। रात 11 बजे मंदिर के पुजारी 2 साथियों के साथ उसकी लाश उसके घर छोड़ के चले गए।
तुम्हारी माँ किसने मारी?
वाली ये डाल के गए, उन्होंने मारी है।
मतलब बाबा ने? तुझे पहले जाती थी बाबा के पास
पूजा करने? जाती थी।
तो जैसे रात के 11 बजे तो किस टाइम से पूजा करने वहाँ गई?
शाम को गई थी।
क्या बजे लगवा?
5 बजे।
अगली सुबह घर वालों ने इलाके के थाने में FIR लिखवानी चाही, लेकिन थाना इंचार्ज ने नहीं लिखी। उनका कहना था कि महिला कुएं में गिर के मर गई है। SSP के दखल से FIR लिखी गई।
इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तात्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की तस्दीक के बाद FIR में हत्या के साथ गैंगरेप की दफा बढ़ाई गई। पुलिस ने जल्द ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सब पे NSA लगेगा।
ये फिट केस बनता है NSA का, हम इसमें NSA की भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो परिवारजन हैं उनको जो प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से जो सहायता धनराशि और अन्य अनुदान जो है वो करीब 20 लाख रुपए तक के हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से ये सब उनको दिलवाए जाएंगे।
कहाँ थे आप?
लेकिन आरोपी पुजारी का कहना है कि वो उसे कुएं में गिरी मिली थी।
तुझे कब आई थी यहाँ?
शाम है आई है।
कल शाम या आज शाम?
आज शाम, जा खत्म नहीं था।
कल शाम? तो फिर इसके बाद में घर वालों को सूचना ना दी?
घर वालों का फोन नंबर ना हो फिर दही बात पर सूचना।
फिर जी मर कैसे गई? हाँ, कुएं में कैसे गिरी?
कुआ मुझे आई है तब मैं लेकर ही गिर गई।
अपना भी गिर गई
और हमारे माल बना करी?
तुम्हें जानकारी ना?
जब क्या नहीं तो बजे के गए
अंदर के क्या नहीं?
हाँ।
तो पता चल गई तुम्हें?
हाँ।
17 घंटे बाद इस घटना की FIR होना ये बताता है कि महिला सुरक्षा के इतने संवेदनशील मामलों में पुलिस के तमाम लोगों का रवैया अभी भी कैसा है। मुख्यमंत्री इससे नाराज हैं, उन्होंने बरेली जोन के ADG को इसकी जांच सौंपी है और STF को इसमें सहयोग करने कहा है। बदायूं में रणदीप और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।